समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर आज मैं हूं नवीन सक्सेना, और इन खबरों में मेरा साथ दे रही हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार नवीन।
शगुन, आज के इस शो में क्या कुछ होगा, क्या खास होगा, एक उस पर नजर डालते हैं।
जी बिल्कुल। फर्स्ट, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, इन टुडेज प्रोग्राम, एज नवीन सेड, वील गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। वील ऑल्सो प्रोवाइड यू मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड वील एक्सप्लोर टुडेज हिस्ट्री, विच इज 19th of April. This is coming up for our listeners.
शगुन, हम ये भी बताएंगे कि आज का दिन क्यों खास है, किन महान व्यक्तियों के साथ ये जुड़ा हुआ है और क्यों वो महान व्यक्ति बने, क्यों हम उसको, उन लोगों को आज के दिन हम याद करेंगे। इसके अलावा एक खास बीमारी पर भी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन उसे लेकर विशेष तौर पर मनाया जाता है। और ये भी बताएंगे कि खेलों की दुनिया में आज किस भारतीय खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है।
So there is a lot that is coming up for you listeners. So make sure that you stick around with us till the end.
तो भाई, शगुन का कहना मानिएगा और हमारे साथ आधे घंटे तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ठीक आधे घंटे के बाद हम आपको पूरे दिन भर के लिए तैयार कर देंगे।
True that, नवीन।
नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि वर्ष 2030 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वो कल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA द्वारा आयोजित मराठवाड़ा आत्मनिर्भर भारत की रक्षा भूमि संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रक्षा निर्यात में 40 गुना वृद्धि हुई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज इंक्रीज्ड 5 times in the last 10 years. Talking to reporters at Manesar in Gurugram of Haryana, Mr. Vaishnav said there has been a big jump in the electronics manufacturing sector because of the Make in India initiative. He said the electronics export has also increased 6 times in the last 10 years and it has crossed 3,25,000 crore rupees.
10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज में कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, AI कैमराज, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स, सिग्नलिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स के प्रोडक्ट, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है।
The minister also said that the government had recently approved the electronic component manufacturing scheme, which will further deepen the electronics manufacturing ecosystem and lead to job growth. Mr. Vaishnav said global confidence in India's electronics manufacturing surges with rising product quality and stronger IP safeguards. The IT minister also inaugurated VVDN Technologies state-of-the-art surface mount technology SMT line and mechanical innovation park at Manesar.
शगुन कहते हैं कि तीर कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसी तरह से हमारे मुख से जो भी बात निकल जाती है वो कभी लौट कर नहीं आती।
Never come
लेकिन
back.
अगर अच्छी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, उनको संकलित कर लिया जाए, तो भविष्य में कहीं ना कहीं हम उनसे शिक्षा जरूर ले सकते हैं।
Agreed with you.
जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का कल नई दिल्ली में विमोचन किया गया। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इसका विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने और उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की।
India reaffirmed its commitment to inclusive, equitable and sustainable agriculture at the 15th meeting of BRICS agriculture ministers. Speaking at the meeting held in Brazil yesterday, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said global food security goals would remain unfulfilled unless small farmers are protected and empowered. He underscored that for India, empowering women socially, economically and politically is a mission. During the meeting, BRICS agriculture ministers launched the BRICS Land Restoration Partnership to address land degradation, desertification and the loss of soil fertility. In the joint declaration, BRICS nations collectively reiterated their resolve to make the global agri-food system fair, inclusive, innovative and sustainable. Meanwhile, Mr. Chauhan also invited BRICS nations to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit, WAVE Summit, beginning May 1st this year, and the World Food India, to be held in September 2025.
12th एक ऐसी क्लास है जिसके बाद हर किसी का सपना यही रहता है कि किसी ना किसी तरह से इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, है ना?
Very popular course.
और इंतजार उसको रहता है कि भाई अगर उसने जेई का एग्जाम दिया है तो उसका परिणाम आया कि नहीं आया, उसका रिजल्ट आया नहीं आया। तो हम आपको बता दें कि इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के मुख्य द्वितीय सत्र का परिणाम वो है वो घोषित हो चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने एक बयान में कहा कि परिणाम जेईई की मेन वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए jeeemain.nta.nic.in। यहां पर रिजल्ट देखा जा सकता है और यह परीक्षा 2 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। तो क्रॉस फिंगर कर लीजिए अपनी, अगर अंग्रेजी की बात करें तो साइट खोलिएगा और देखिएगा, आपका नाम वहां पे जरूर होगा।
एंड ऑल आवर बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, मे दे हैव डन वे बेटर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दे हैव एक्सेल्ड इन इट।
और शगुन, वैसे ये सपना ही होता है ना, एकदम जेई का एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक से इंजीनियर बन जाए और 4 या 5 साल बाद आप देखिएगा ना, फिर एकदम लव्स भरी जिंदगी होती है या पैसे ही पैसा आपके पास।
राइट नवीन। Moving on, the government stated that claims suggesting it is considering levying GST on UPI transactions over 2,000 rupees are completely false, misleading and without any basis. In a statement, the finance ministry clarified that currently no such proposal is under consideration by the government. It added that GST is levied only on charges such as the merchant discount rate, MDR, related to payments made using certain instruments. The ministry further noted that effective from January 2020, the Central Board of Direct Taxes, CBDT, removed the MDR on person-to-merchant, which is P2M, UPI transactions.
और हम नजर डाल लेते हैं कुछ विदेशी खबरों पर। अमरीका और इटली ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना बताया है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत से खाड़ी देशों इसराइल, इटली और अमरीका तक आर्थिक विकास तथा एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।
नवीन, लेट मी शेयर अनदर इंटरनेशनल अपडेट हियर। US President Donald Trump said the United States could stop trying to help negotiate peace between Russia and Ukraine if either side makes talks too difficult. Speaking in the Oval Office yesterday, Trump said he wanted the war to end quickly but wasn't setting a deadline. He said if one of the two parties makes it very difficult, we'll just take a pass. His comments came after US Secretary of State Marco Rubio also warned that talks wouldn't continue for long if progress isn't made soon. He said United States is not going to keep at this for weeks and months.
और अब पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और नजर डाल लेते हैं खेल खबरों पर। और शगुन और मुझे ये बताने के आपको बहुत खुशी हो रही है कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। भारत के हिमांशु झाखड़ ने सऊदी अरब के दब्बान में अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया है। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ निखिल मौजूद हैं और निखिल से जानते हैं कि क्या कुछ रहा खेलों की दुनिया में इस स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीतने के साथ। निखिल।
नवीन, सही कहा आपने, हिमांशु ने 67.57 मीटर तक भाला फेंक कर इतिहास रचा है और पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में पुरुषों की हाई जंप में दीपक भूषण ने रजत पदक जीता है। वहीं महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में आरती ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की मेडले रिले में भी भारत ने रजत पदक जीता है। चैंपियनशिप में भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक हासिल कर चुका है। उधर क्वालालंपुर में भारत के वीर चोटरानी, अनहस सिंह और आकांक्षा सालुके विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज अनहत का मुकाबला हांगकांग की हेलेन टैंग से होगा, जबकि आकांक्षा का सामना हांगकांग की टोविस से होगा। टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ी अगले महीने 9 से 17 मई तक शिकागो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में खेलेंगे। और नवीन, हम आईपीएल क्रिकेट की बात करें तो कल चेन्नई में बारिश से प्रभावित हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। और अब आज सवेरे में आगे की जानकारी तथा खबरों के लिए वापस चलते हैं नवीन और शगुन के पास।
धन्यवाद निखिल इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे सुनने वालों को ये बताने के लिए कि आज खेलों की दुनिया में वो क्या कुछ लुत्फ उठा सकते हैं।
जी बिल्कुल।
तो बहरहाल ये तमाम खबरें जो जुड़ी हुई थी आज से। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर जो जुड़ी हुई हैं आपके शहर से। और अगर शगुन की इजाजत हो तो सबसे पहले दिल्ली।
All yours.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल भारत मंडपम में आयोजित राइड एशिया ईवी एक्सपो में हिस्सा लिया। ये एक्सपो भारत में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों की एक प्रदर्शनी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार देश में 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला शहर बनाने की योजना बना रही है।
पूरी एग्जीबिशन को मैं बधाई देती हूँ, पूरी टीम को, कि आपने एक एक्स्ट्रा सेक्टर चुना है जो सच में सिर्फ बिजनेस नहीं है। इसको सही मायने में मानिए तो देश की प्रगति का रास्ता इस फील्ड से होके गुजरने वाला है। यही माध्यम बनेगा पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए।
राइड एशिया ईवी एक्सपो का 6वां संस्करण कल से शुरू हुआ, जो 20 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में 300 से अधिक ब्रांड हिस्सा ले रखे हैं। अगली खबर, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार जल्द ही रूपरेखा और रोड मैप जनता के सामने पेश करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 13 स्थानों पर वाटर मिस्ट प्रणाली लगाई जाएगी और प्रदूषण से ग्रसित इलाकों की तराई के लिए 1000 वाटर टैंक को काम पर लगाया जाएगा।
दिल्ली में जो व्हीकल बाहर से वाहन आ रहे हैं और 10 साल और 15 साल से उनकी उम्र ज्यादा है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली के जितने बॉर्डर्स हैं सभी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर कैमरा लगेंगे। ये कैमरा जैसे ही गाड़ी हमारे अंदर घुसेगी उसको तुरंत मैसेज आ जाएगा और उसको कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी वापस बाहर लेके जाइए।
दिल्ली से जुड़ी एक और खबर इस समय हमें मिल रही है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के 6 बजे 6 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और दिल्ली पुलिस के दल घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। करीब 10 दमकल गाड़ियां भी घटना स्थल पर भेजी गई हैं। तो ये थी दिल्ली की खबरें।
नाउ फोकसिंग ऑन चेन्नई, Dr. Matthew Samuel Kalarikal, popularly known as the father of angioplasty in India, passed away at Apollo Hospital on Friday. A pioneer in interventional cardiology who repaired thousands of hearts and mentored many young doctors over 50 years was under treatment for a chronic condition. He was the founder convener of the National Angioplasty Registry of India, a forum for interventional cardiologists. Dr. Kalarikal was keen on setting standard protocols for cardiac procedures while embracing new technology and research. After obtaining an MBBS degree from Kottayam Government Medical College in Kerala, he secured post-graduation at Stanley Medical College and Super Speciality and Madras Medical College.
अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने जन स्वास्थ्य विभाग को राज्य में दुर्घटना पीड़ितों के लिए स्वीकृत और अन्य आपातकालीन अस्पतालों में 1,00,000 रुपए तक के कैशलेस उपचार का प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उधर मुंबई के ठाणे और पालघर जिलों में यातायात को संचालित करने के लिए AI आधारित पहचान प्रणाली शुरू की गई है। पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने कल बताया कि इस साल मार्च में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में AI आधारित प्रणाली शुरू की गई थी और इसके माध्यम से पहला ट्रैफिक चालान 7 अप्रैल को जारी किया गया था।
Now let's turn our attention to Bengaluru. Well, Karnataka ranks fourth in organ pledging nationwide with 35,920 registrations as of April 17, according to the National Organ and Tissue Transplant Organization. Maharashtra leads with 50,886 pledges, followed by Rajasthan 43,376 and Gujarat 36,550. I have another update from Bengaluru. The premium floor area ratio scheme has officially been launched in Bengaluru with the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike now accepting applications from property owners and developers. Well, this is also BBMP. This follows the state government's final notification, despite concerns that increased building heights could strain the city's infrastructure, including roads and sanitation. BBMP Chief Commissioner Tushar Girinath confirmed that the town planning department has begun receiving applications supported by newly developed software for digital processing.
कोलकाता की खबरों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत आज राज्य सचिवालय नबन्ना में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और गृह सचिव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिलों में विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहेंगे।
Next update is from Hyderabad here, Naveen. Japan-based global digital transformation and IT services company NTT Data could platform company, cloud platform company, I beg your pardon, NESA Networks and the Telangana government have signed an agreement to set up an artificial intelligence data center cluster in Hyderabad with an investment of 10,500 crore rupees. The agreement was formalized in the presence of Chief Minister Erivanth Reddy during a high-level meeting in Japan yesterday. An official release stated that the upcoming facility in Hyderabad will feature a 400-megawatt data center cluster designed to host the country's most powerful AI supercomputing infrastructure with 25,000 GPUs, which is graphics processing units.
और अब मौसम का रुख करते हैं। दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और मौसम विभाग कहता है कि आज हल्की आंधी और बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। मुंबई की बात करें तो तापमान 23 डिग्री और 34 डिग्री के बीच रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
Talking about Chennai, it is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky again and there is a possibility of light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky again and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
शगुन हर दिन अपने आप में खास होता है और हर दिन को मनाने के लिए उसको एक विशेष नाम भी दिया जाता है ताकि लोग किसी वजह से या किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में उसको याद रखें और आज का दिन जुड़ा हुआ है एक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से।
Well, yes, Naveen, today it's World Liver Day. It is observed every year on April 19th. And the aim behind this is to raise awareness about liver health. But I would like to ask, why should liver health be a priority?
लिवर जो है शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है शगुन, जो पाचन, विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और अगर बात करें तो ऊर्जा संचयन जैसे कई कार्य करता है। और जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, जिसे हम मॉडर्न एकदम लाइफस्टाइल कहते हैं और हिंदी की बात करें तो आधुनिक जीवन शैली है, गलत खान पान की ओर ले जाती है हमारे और लीवर से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। और ये शरीर का वो अंग है कि अगर इसने खराब होना शुरू हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होता है ठीक होना।
Rightly said, Naveen. Liver acts as the body's powerhouse, performing over, this is amazing to note here, 500 functions to keep you functioning at your best. Well, one of the functions is filtering toxins to processing nutrients. Other one, a healthy liver is essential for overall well-being. So take care of your liver. It is crucial, listeners, to maintain overall health and prevent liver diseases. I can mention too, liver cancer and hepatitis. So very simple steps can be taken. First one is eating a healthy diet, also limiting alcohol consumption and staying physically active. This can help your liver in, this can keep your liver basically in top shape.
वेट को अपने कंट्रोल करें, वेट मैनेजमेंट पर अपना ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें। और जानते हैं कि वर्ल्ड लिवर डे की शुरुआत कब और किसने की थी? इसकी शुरुआत स्वास्थ्य संगठनों द्वारा मिलकर की गई थी, जिसका उद्देश्य रहा वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर लिवर स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हालांकि इसकी जो सटीक शुरुआत थी वो उसकी डेट बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों से मनाया जा रहा है और आज का दिन है उसको जोड़ दिया गया है वर्ल्ड लिवर डे से।
सो लिसनर्स, लेट्स यूज वर्ल्ड लिवर डे एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट कॉन्जर्वेशंस, आल्सो टू रेज अवेयरनेस एंड आल्सो टू एनकरेज हेल्थी लिविंग हैबिट्स। बाय लविंग योर लिवर यू कैन प्रोटेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर द इयर्स टू कम।
शगुन, बहुत कुछ इसके बारे में लिखा जा चुका है, बहुत कुछ लोग जानते भी हैं और अक्सर कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी चूक कर जाते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम आप सबको जानकारी दें, आपको बताएं कि क्यों खास रहता है आज का दिन। और ये भी हमने आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन जो लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां थी वो किस वजह से आपको हो सकती है। तो हमारा तो यही कहना है कि पाचन क्रिया पे अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइए
और न्यूट्रिशियस एंड फ्रेश फूड्स
और फ्रेश फूड और हाँ व्यायाम जरूर कीजिए, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह से हम खाना खाते हैं ना, जिस तरह से बाकी दैनिक क्रियाएं करते हैं, उसी तरह से व्यायाम को, एक्सरसाइज को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए।
अग्री, आई अग्री विद यू टोटली, एंड वी शुड ऑल्सो टेक सम टाइम टूडे इटसेल्फ एंड ऑल्सो एवरी डे टू अप्रिशिएट एंड केयर फॉर आवर लिवर।
नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया में आज घटित हुई उन घटनाओं के बारे में भी जिन्हें आज जानना जरूरी है। आर्यभट्ट नाम सबने सुना होगा, 1975 में वो आज ही का दिन था जब भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था और अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था, 360 किलो का था और आर्यभट्ट को सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। नाम रखा गया था मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर।
वेल, गोइंग अ लिटिल बैक हियर, इंडिया 1960 मीटिंग ऑफ अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली।
आज के दिन 1775 में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने पूरे के पूरे अमेरिकी देश को बदल कर रख दिया था।
इन द ईयर 1976 महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन हरियाणा।
1919 में वो आज का दिन था जब अमेरिका के लेस्ली एर्विन ने पैराशूट से पहली बार छलांग लगाई थी।
इन 1981 इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड महाराष्ट्र विधान भवन।
खेलों की बात करें तो 1971 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आज ही के दिन जीत ली थी।
इन द ईयर 1997 आईके गुजराल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज चोजन द लीडर ऑफ यूनाइटेड फ्रंट।
तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब याद करेंगे उन महान व्यक्तियों को, उन महान हस्तियों को जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं। आज पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज की जन्म जयंती है। उनके महत्वपूर्ण योगदान और प्रयासों के फलस्वरूप ही देश में DAV के नाम से विद्यालय और महाविद्यालय शुरू किए गए थे। एक और हस्ती है जिसे मैं याद करना चाहूंगा, वो है भारत की प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज। आज उनका जन्मदिन है। अंजू का जन्म आज के दिन 1977 में दक्षिण मध्य केरल के कोट्टायम जिले के छोटे से कस्बे चीरनचीरा में हुआ था। सितंबर 2003 पेरिस में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने, और भारत को पहली बार विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिलाकर सम्मानित किया था। अंजू बी जॉर्ज वर्ष 2003 से में 25 वर्ष की उम्र में भारत की पहली पदक विजेता बनी थी विश्व एथलेटिक्स में। उन्हें राजीव गांधी खेल पदक पुरस्कार से भी प्रदान किया गया और उन्होंने कुछ इस तरह से अपने बारे में बताया।
Actually, that was not my choice. My father was very much interested in sports, so he asked me to, he put me into sports, and he, at the age of 5, I started athletics. I was training them from that day. I can say that from second or third standard, I started competition, like small level competition. From fifth standard, I was doing under a special coach. Normally, my day started around 4 o'clock, so I used to go to ground, and after training from there directly to school. That was a hectic schedule for me at that age. I got the World Championship bronze medal for first ever India's medal in the world stage.
तो ये थी महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज।
Well now listeners, today we are also remembering Krishnaji Gopal Karve, freedom fighter. Well, he was member of the Abhinav Bharat Society in Nashik. Well, he on 21 December 1909, he along with Anant Lakshman Kanhare, which Naveen will tell you about, and Vinayak Narayan Deshpande, he shot. They were the collector of Nashik, so they had to. They made a plan basically, and then because of that, he was basically hanged in Thane jail on 19 April 1910.
वाकई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा अनगिनत वीर क्रांतिकारियों के त्याग साहस और बलिदान से रची गई है। 1910 में आज ही के दिन देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले युवा क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हरे का निधन हुआ था। उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। बात उन दिनों की है जब नासिक का तत्कालीन कलेक्टर जैक्सन अपने आप को भारतीयों को हितैषी दिखाने का ढोंग करता था, लेकिन वो अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर और अन्यायी अधिकारी था। बस इसी के चलते रोष फैला मराठों के अंदर और कन्हरे ने उसे मौत के घाट उतार दिया 21 दिसंबर 1909 को। केवल 18 साल की उम्र थी जब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। बस यही कहना चाहेंगे हम उनके लिए।
जाएंगे ऐ वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के अब करेंगे हर एक वार का सामना सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के अब करेंगे हर एक वार का सामना।
आज एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार की महान अभिनेत्री जो हिंदी सिनेमा भी सक्रिय थी, आज उनकी भी जन्म जयंती है। आज ही के दिन 19 अप्रैल 1945 में उनका जन्म हुआ था। 2018 में बॉलीवुड फिल्म बधाई हो और धारावाहिक टेलीविजन शो बालिका वधु, नाम सुरेखा सीकरी। सुरेखा सीकरी से जब बात की गई उनके करियर के बारे में तो उन्होंने कुछ यूं कहा।
मैं थिएटर की हूँ तो मैंने थिएटर में ही अपना दिल भर लिया है अच्छे अच्छे रोल्स करके, तो मुझे वो इतनी भूख भी नहीं थी कि मुझे कुछ करना ही है फिल्मों में। आई मूव टू बॉम्बे फॉर अदर रीजंस, नॉट एक्चुअली टू डू एनी फिल्म्स वगैरह। तो बाय द वे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टेलीविजन, वहाँ कुछ ठीक ठाक रोल्स मिले मुझे, जैसे आई स्टार्टेड विद बनेगी अपनी बात। Then there were a couple of other things. Beech mein Balika Vadhu happened. Mm-hmm. That was for 7-8 years. So I feel fulfilled that I like to do my best, whatever I am doing. Chahe wo badi screen ho, chahe choti screen ho.
Well, listeners, before telling you about our next personality, I want you to listen to this song.
चुरा कर दिल को यूं आंखें चुराना किससे सीखा है, जरा सी बात पर ये रूट जाना किससे सीखा है।
Well, the song is from the film Ambar, which is directed by our personality here, which I'm talking about, Jayant Desai, film director. Well, his journey in Indian cinema is exceptional, and it's a legacy which he has left behind, and he has solidified his reputation as a formidable director here.
चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर आए, मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो।
और आज ही जन्मदिन है बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का। 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने से अपने करियर की शुरुआत की, फिर मुन्ना भाई MBBS, गोलमाल धमाल और जॉली LLB, इसको हम कैसे भूल सकते हैं।
पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। साल भर और ये केस चले दीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजपाल साहब ये साबित कर देंगे कि ये आदमी सदाकांत मिश्रानी और लैक ऑफ एविडेंस के बिना पे आपको ये बात माननी ही पड़ेगी।
ये कलाकार थे अरशद वारसी, जिनका आज जन्मदिन है, और अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि हम कुछ और डिस्कस करें। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मैं नवीन और शगुन आपको इस खूबसूरत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हर चुनौती में एक नया अवसर छिपा होता है, इसे पहचानो और आगे बढ़ो।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।